जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे समय सार परमागम की 69वीं और 70वीं गाथा चल रही है। पहले घंटे के व्याख्यान में अपन ने बहुत कुछ बात स्पष्ट की थी, फिर भी आज आत्मख्याति जो टीका है अमरचंद की, उस टीका का अनुवाद पढ़ते हैं। देखो, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ते हैं, दोनों का अंतर आपके ध्यान में आएगा कि कितनी बात हमारे ख्याल में आती है स्पष्टता से। यह आत्मा तादात्म संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उसमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने निशंकतया प्रवर्तता है, क्योंकि तादात्म संबंध है, अपना ही है और अपने में किसी के कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में हमने जिस तरह निशंक प्रवृत्ति करते हैं ना, तिजोरी की चाबी उठा के तिजोरी से नोट निकाल लेते हैं, कोई विकल्प भी नहीं आता है कि कोई देख तो नहीं रहा है ना? इस कारण उसमें निशंक नहीं, निशंकता प्रवर्तता है, सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया है, किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने से प्रवर्तता है, निशंकतया प्रवर्तता है। यह ठीक नहीं है, वहां ठीक था ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, प्रभावभूत विभावभूत क्रिया है, इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध किया गया है। इतना स्पष्ट हो गया कि आत्मा का और ज्ञान का जो संबंध है वो आत्मा और राग का वो संबंध नहीं है, इनमें तादात्म संबंध। तादात्म संबंध का मतलब वो होता है कि अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो एक क्षण को भी अलग अलग ना हो, एक क्षण तादात्म भी होता है। यहां एक त्रिकाली तादात्म लेना, क्षण तादात्म पर्याय के साथ होता है, जैसे कि मान लो कि निर्मल पर्याय है वो एक समय की है, तो आत्मा का उसका संबंध क्या है? आत्मा अनादि अनंत है, प्रकृति है तो तादात्म ही, लेकिन एक क्षण का है, अनित्य तादात्म्य बोलते हैं, क्षणिक तादात्म्य कहो तो अनित्य कहो, क्षणिक का अर्थ भी अनित्य ही होता है ना? तो इसका ये नित्य तादात्म संबंध माने अनादि काल से अनंत काल तक जिसका कभी वियोग ना हो। अब क्रोध के साथ ऐसा नहीं है, ज्ञान की कोई भी पर्याय रहे, चाहे केवल ज्ञान रहे और चाहे पर्याय नाम का सबसे छोटा ज्ञान होता है जो निगोदिया के होता है, लब्धिय पर्याप्त के वो रहे, लेकिन वो ज्ञान गुण और उसका परिणामक दोनों ही चीजें एक समय भी आत्मा उनसे खाली नहीं होगा। समुद्र भद्राचार्य ने सर्वज्ञ की सिद्धि की, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, तो उन्होंने एक कारिका लिखी कि दोषावरण योरहानि निशेष अतिशायनात्, कि दोष और आवरण की हानि और वृद्धि होती है, तो जिसकी हानि होती है उसकी एक दिन पूर्ण भी हानि हो सकती है। निशेषा अतिशायनात्, वो निशेष मैंने पूरी भी हो सकती है, क्योंकि अतिशायन नाम का हेतु है, क्योंकि उन्हें घटने बढ़ने का स्वभाव है। तो अभी उन्होंने कहा कि ज्ञान बढ़ेगा तो बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगा, और घटेगा तो घटते घटते कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि वो ज्ञान वरण कर्म है ना, तो उसका स्वरूप सम होगा। तो दोष और आवरण, दोष माने मोहिनी कर्म की वजह से होने वाला विकार, और आवरण माने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की वजह से होने वाला विकार है ना। तो ये दोनों घटते बढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है कि मन पर यदि ज्ञान बढ़ेगा सूक्ष्म ज्ञान, तो बढ़ते 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 ज्ञान बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा सोचो, और घटेगा तो कहां तक पहुंचेगा। तो जो उसमें उत्तर दिया है आप सुनेंगे तो आपको बहुत अटपटा लगेगा कि बढ़ेगा तो बढ़ते 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 सर्वावधि परमावधि अवधि का मन पर ज्ञान का जो विवेचक कौन सा वो विपुलमति वहां तक पहुंच जाएगा, और घटेगा तो घटते 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 केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? घटते घटते केवल ज्ञान है ना। आज पता तो वो कहते क्यों, कहते सूक्ष्म ज्ञान घटते घटते पूरा घट जाएगा तो आत्मा जड़ तो हो नहीं सकता, तो वो केवल के ही पूरा घटता है सूक्ष्म ज्ञान। समझ गया? तो बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते मन पर ज्ञान का उत्कृष्ट कोटि का अंश, और घटेगा तो घटते घटते केवल ज्ञान अतिशायनाथ हेतु है। तो वो ये कहते हैं यहां पर ये बात चल रही है कि दोनों का जो संबंध है, देखो ज्ञान पर्याय का भी एक क्षण का ही संबंध है पर्याय का, और तो क्रोध पर्याय का भी एक क्षण का संबंध है। तो क्षणिक तादात्म्य संबंध दोनों के साथ है, एक अशुद्ध निश्चय ने का दशा बनती है और एक शुद्ध निश्चय ने का दशा बनती है। ख्याल है ना। लेकिन फिर भी एक परंपरा की दृष्टि से कि ज्ञान पर्याय वो पर्टिकुलर पर्याय चली जाएगी, कोई ना कोई पर्याय भी अवश्य रहेगी। समझे, ज्ञान का दीपक कभी बुझता नहीं है, बुझ नहीं सकता है, बुझ जाए तो द्वारा जल नहीं सकता है। दीपक की ज्योति तेल कम हो जाए खत्म हो जाए तो टिमटिमाती रहे, तो जब तक वो टिमटिमाती रहेगी तब तक उसमें तेल डाल देंगे तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक तरह बुझ गई तो कितना ही तेल डालना फिर वो नहीं बढ़ेगी। समझे, एक नियम है ये। डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई जब तक देह आत्मा में से नहीं आत्मा देह में से नहीं निकला तब तक हमारी कोशिश चल सकती है, तो कितनी ही बुरी हालत हो गई हो लेकिन हम उसे ला सकते हैं, और मामला खत्म तो फिर हमारा कुछ नहीं चलता है। तो इसलिए कहते ज्ञान में जो निर्मल पर्याय ज्ञान है, निर्मल छोड़ो निर्मल पर्याय उसमें ये व्यवस्था है कि दीपक की ज्योति कभी बुझेगी ही नहीं, तो पर्याय नाम का जो ज्ञान है निर्ज्योतिया का वो निरावरण है, उसमें ज्ञानावरण कर्म का आवरण नहीं होता। यदि हो जाए तो वह खत्म हो जाएगा, आत्मा ही खत्म हो जाएगा। ये सब शास्त्र की बात है, कोई मेरी तरफ से कोई बड़ी बात नहीं है। आपने नहीं सुनी होगी तो आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन तो थोड़ा जिनका कर्मवाणियों का अभ्यास है और वो तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ये सब जानते हैं, हमारे तो सब विद्यार्थी जानते हैं। तो अब यहां बात चल रही है कि वो ज्ञान का जो वो ये संबंध है अनादि अनंत, तो ऐसा अनादि अनंत तादात्म्य है देव के साथ, गुण के साथ, पर्याय पर्याय के साथ, कैसा एक एक पर्टिकुलर पर्याय के साथ नहीं, लेकिन कोई ना कोई पर्याय, लेकिन क्रोध की कोई ना कोई पर्याय अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो की वो तो रहेगी ही नहीं, लेकिन मोक्ष में चला जाएगा तो नहीं रहेगी ना क्रोध की पर्याय। इसलिए ऐसे बोलते हैं संयोग सिद्ध संबंध। ये संयोग सिद्ध संबंध ऐसा नाम क्या, संयोग क्यों नहीं कहते? गुरुदेव तो कहते हैं पर्याय पर्याय को भी संयोग कहा है, आता है गुरुदेव के एक वाक्य में आता है। अब यहां कहते संयोग सिद्ध संबंध, कहते हैं ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती है, पर के पर का नाम है संयोग, दो द्रव्यों के बीच को बोलते होता ना तो उन्हें संयोग बोलते हैं, एक द्रव्य में नहीं बोलते हैं। वो गुरुदेव ने कहा अध्यात्म की दृष्टि से उसको यहां पर मत लगाना, यहां दो द्रव्य होना तो उनकी मिलावट को संयोग बोलते हैं, मतलब वे दोनों द्रव्यों में क्या संबंध है कि संयोग सिद्ध संबंध है। तो उसके लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ ना, मैं निमित्त कल बताया था, उसके उसके निमित्त से हुआ, निमित्त संयोग माने निमित्त समझ लो, तो इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव है, वो उपाधि है, उसमें जो औपाधिक भाव है, इसलिए उसको संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं। वो संबंध संयोग से ही सिद्ध हुआ है कि हर महिला में जो बांझ नहीं है उसमें संतान को उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन वो संयोग सिद्ध संबंध से होगी। उसके साथ ये शर्त लग रही क्या कि वो अकेली कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती, समझे ना, मैंने वो संयोग की शर्त लग रही ना, तो ऐसी एक क्रोधादि पर्याय है, ये संतान ये संयोग सिद्ध संबंध वाली है, ऐसी शर्त लग रही है कि वो आत्मा अपने में लक्ष्य कर ले और ऐसा चला जाए और वो क्रोध पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो अपनी उपादानगत योग्यता से पैदा होता होगा, लेकिन वो निमित्त की उपस्थिति, समझ लो अभी बड़ी दिक्कत है कि निमित्त की अनिवार्यता और निमित्त का अकर्तापन, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है वो हमें समझनी है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम जो उसकी अनिवार्यता है उसकी हम बात बताते हैं आपको, तो उसमें आपको कर्तापन घुस जाता है, कर्तापन का निषेध करते हैं तो आप अनिवार्यता जो उपस्थिति है उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। इसलिए बोलते संयोग सिद्ध संबंध, जो संबंध संयोग से ही सिद्ध होता है, और तीसरा है संयोग ही, वो भी संयोग ही संबंध है, वो एक क्षेत्र आप गाय संबंध बोलते हैं, एक क्षेत्र में दोनों संयोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा और आपका भी हेमचंदी संयोग मिल गया ना, मद्रास में मिल गया था, यहां देवलाली में मिल गया, इसको भी कह सकते हैं, आपको देख के मुझे राग हुआ, मुझे देख के आपको राग हुआ, इसे भी संयोग सिद्ध कह सकते हैं। राग ही हो तो भी संबंध कहलाएगा, ऐसा नहीं है, द्वेष हो तो भी हो जाएगा, मुझे आपको देख के गुस्सा आए और आपको मेरे देख के गुस्सा आए वो, और मुझे देख के आपको प्रेम उमड़े और आपको देख के मुझे, दोनों ये रिश्तेदारी एक ही है, दोनों ही संधि संधि है, रिश्तेदारी में कोई फर्क नहीं है। अध्यात्म में दोनों का एक ही नाम दिया है, क्यों, चाहे प्रेम उमड़े चाहे क्रोध आए, लेकिन वो परलक्ष के बिना नहीं होगा, है? और वो, लेकिन एक क्षेत्रावकाश की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन देव और आत्मा का एक क्षेत्रावकाश है, तो तीन संबंध किए। देखो मैं गुरुदेव का कोटेशन लाया हूं इसके लिए आपको निकाल के, अभी ये कल रख दो तो मुझे घर से नहीं लाना पड़ेगा, तो कल तो मैं लाऊंगा, क्यों मुझे भरोसा नहीं है, कल लिखा जाएगा तो परसों नहीं लाऊंगा। देखो उक्त विषय वस्तु को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, राग और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है, कर्म और आत्मा का परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध है। ये ज्ञान वर्णादि कर्म है, ये आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र बंधन होता है ना, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, सिद्ध संबंध है, तथा दोनों का अभेद भाव से प्रणमन होना धर्म है। राग व आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध है, दोनों को एक मान का प्रणमन करना अज्ञान है। कर्म और आत्मा में एक क्षेत्रावकाश संबंध है, कर्म और आत्मा परस्पर एक क्षेत्र में व्याप्त होकर रहते हैं, ऐसा संबंध रूप ही बंध है, इसका नाम बंध है। कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध होता है मैंने क्या, वो कारमान वर्गणा और आत्मा के प्रदेश, कारमान वर्णा कर्म रूप प्रणमित हो जाए और फिर आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवकाश रूप से संबंधित हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, बंद हुआ कर्म, कर्म का बंद हुआ का मतलब ये है। क्रिया तीन प्रकार की होती है, शरीर मन वाणी धनादि जड़ रूप परद्रव्य की क्रिया जड़ की क्रिया है, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया व्यवहार की क्रिया है, और स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। तीन क्रियाएं बताई ना, जड़ की क्रिया तो आत्मा में, आत्मा तीन काल में कभी भी करता ही नहीं है, कर भी नहीं सकता, ज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार ज्ञान में एकत्व भाव से निशंक बने रहता हुआ आत्मा राग की क्रिया को भी नहीं करता, ज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव करने पर ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है। इसमें द्रव्य गुण व पर्याय तीनों आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, जानना 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 मात्र जिसका स्वभाव है वह आत्मा द्रव्य। देखो क्या बनवा था, देखो पर्याय जिसका स्वभाव जानना स्वभाव है, जानना 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 जिसका स्वभाव है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो मैं ज्ञान गुण स्वभावी हूँ कि ज्ञान पर्याय स्वभावी हूँ? मैं आनंद स्वभावी हूँ तो सुख गुण स्वभावी हूँ कि पर्याय स्वभावी हूँ? यहाँ क्या कह रहे हैं, गुण पर्याय दोनों ही, गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम है ना, समझे ना? घबरा ना नहीं, क्या अभी तो हमारा आनंद पर्याय तो है ही नहीं, हमारे सब में ज्ञान पर्याय तो है, तो नहीं रहने दो। आपका स्वभाव तो ऐसा है ना, सवाल पर्याय में परिणमन है कि नहीं है उसकी बात नहीं है, बात तो स्वभाव की है। आपका स्वभाव वैसा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं वर्तमान की चिंता मत करो, स्वभाव के आधार से दुनिया चलती है, धर्म भी स्वभाव के आधार से चलता है, पर्याय के आधार से नहीं चलता है। उसके लिए मेरा एक उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध, कि घर में आदमी का माथा बहुत गर्म हो गया, बहुत गुस्से में आ गया और एकदम अनाप शनाप पत्नी को बच्चों को बकने लगा, निकल जाओ मेरे घर से। पत्नी आई, एक कप चाय बना के लाई और ये बोली कि ये आप चाय पी लो फिर हम चले जाएंगे। कि नहीं पीना, मैंने कह दिया तुम निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। कि कह दिया ना चले जाएंगे, लेकिन उसने वो चाय नहीं पी, वो पत्नी ने वहीं रख दी और समझाती रही कि चाय पी लो, तुम्हारे 2 बजे चाय पीने की आदत है, फिर तुम्हें सिर दर्द हो जाएगा, फिर बहुत परेशान होगे, इसलिए मैं कहती हूँ चुपचाप पी लो, तो तुम चले जाओ ना कि हम चले जाएंगे। तो बच्चा आया कि मम्मी मम्मी एक प्रश्न है मेरा, बच्चों से बहुत परेशान होते हैं, क्या प्रश्न है बोल तुम भाई बेटा, कि ये पापा कह रहे तुम लोग चले जाओ तो आप चली जाओगी, यहां चले जाएंगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यहां चलना, हम नहीं रहेंगे पापा के साथ, इतना गुस्सा करते चले जाएंगे। तो एक प्रश्न और है, कि ज्यादा प्रश्न नहीं करते, नहीं एक कि जब अपन जा ही रहे हैं तो पापा चाहे पिए चाहे ना पिए, उनके सिर में दर्द हो चाहे ना हो, अपन को क्या लेना देना, मारे दर्द करा पापा तो तुम्हें निकाल रहे हैं और तुम उनके सिर दर्द की चिंता कर नहीं हो, ये ठीक नहीं है। तो चुप रहे, मुझे अकल सिखाता है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, तू जानता नहीं है, क्या नहीं जानता है कि मैं कहा चुप रहा, अभी वो चुप रहा। आधे घंटे बाद उन पापा का माथा ठंडा हो गया, तो एकदम ठंडा होकर के रसोई में वो खाना बना रही थी, तो वो आकर के बोलते हैं देख पप्पू की मम्मी, मैंने तेरे से कितनी बार कहा कि जब मेरे को गुस्सा आता है तब तू बीच में नहीं बोला करे, लेकिन तू भी नहीं मानती है, और ना मालूम गुस्से में मैं क्या क्या बच गया, माफ कर देना क्या। अब कभी मेरे बीच में जब मेरे को गुस्सा आता हो तब मत बोलना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो तो मैं जानती हूं। तो लड़का के बोला कि एक प्रश्न और है कि ये क्या हुआ, कि बेटा पहली बार थोड़ी हुआ है मेरी भाई, ये तो कई दफे हो चुका है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो रोजाना का धंधा है, ये इनका जो क्षणिक पर्याय है ना, ये क्षणिक तादात्म्य संबंध, इसके भरोसे गृहस्थी भी नहीं चल सकती है। जो उनका एक त्रिकाली स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव माने पूरी पर्याय का, अभी वो त्रिकाली मत लेना आत्मा का, क्या उस वो पर्याय का त्रिकाली, उसमें तो अपने प्रति इनके हृदय में अनंत प्रेम ही बस रहा है, वो राग ही बस रहा है, ये पर्याय जाएगी तो फिर मामला वही का वही हो जाने वाला है। पर यदि इस पर्याय के सत्य के भरोसे क्षणिक मैं घर के छोड़ के चली जाती तो बेटा तुम पैदा ही नहीं होते क्या। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि घर गृहस्थी भी त्रिकाली के भरोसे चलती है, वर्तमान पर्याय के भरोसे नहीं चलती है। तो आत्मा का धर्म वर्तमान के भरोसे चलाओगे कि त्रिकाली के भरोसे? तो ज्ञानी जन जानते हैं कि मेरा अपनापन तो त्रिकाली के साथ है ना। अभी हम गुरुदेव का पढ़ रहे थे ना, जानना 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 मां तो जिसका स्वभाव है वह आत्मा द्रव्य है। जानने रूप ज्ञान, स्वभाव रूप ज्ञान गुण है, और गुण गुणी दोनों में एक अभिन्न है। स्वलक्ष्य रूप से जो प्रणमन हुआ, जो स्वलक्ष्य रूप से वह ज्ञान क्रिया रूप पर्याय है। इस प्रकार ज्ञान क्रिया में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं, अकेली पर्याय नहीं आती है। ऐसी स्वभावभूत क्रिया ही धर्म है, मोक्ष मार्ग है। ज्ञान ही आत्मा है, ऐसी स्वा की ओर ढलती हुई जो स्वात्म प्रतीति, वह सिद्धांत। जो स्वात्म ज्ञान हुआ वह सम्यक ज्ञान, और जो स्वात्म स्थिरता हुआ वह सम्यक चारित्र। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक रूप मुक्ति का मार्ग है। ये गुरुदेव का कोटेशन था, स्पष्ट शब्दों में लिखा क्या नहीं लिखा। एक बात मुझे और बतानी है आपको, परमात्म उसमें से ही यदि आत्मा आश्रमों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है आत्मा को, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया तो क्या हमारा बंध का निरोध हो गया? अभी आपने बताया कि आत्मा जुदा है और आप सब जुदे हैं, और हमने मान लिया, हमें पक्का विश्वास भी हो गया, हमारा तो बंध आना रुक गया होगा ना। ऐसा जानना नहीं, तो कैसा जानना? कि अनुभूति पूर्वक जानना, अनुभूति पूर्वक जानना। अरे भाई, ऐसे जानने से काम होने वाला नहीं है। आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है ना। यही कारण है कि आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की व्याख्या में अज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। जयसेन आचार्य की टीका में, वो जयसेन आचार्य की टीका में जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो आत्मख्याति में नहीं है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो सब अपन ने अनुशीलन में ले ली है। समझाए ना भैया, अनुशीलन पढ़ा तो जयसेन आचार्य की भी कोई बात आपको बाकी नहीं रहेगी। अब तो नियम सार का अनुशीलन भी तैयार है, पहला भाग। मुकुंद भाई, आपके जो होगी ना वेदी प्रतिष्ठा, उसमें लेके आ जाएंगे, तैयार। अभी मैं उसको पूरा करके आया हूँ, फाइनल। फिर इसमें जाएगा, छपेगा, 5000 छपाया है, उसकी कीमत 40 से 45 रुपए के बीच के में आएगी। हम 25 रखना चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग मिला तो 25 रख देंगे। तो अपनी बात क्या चल रही थी? ये तो कि देखो क्या लिखते हैं जैसे ना सारी, किंच तावत क्रोधा सर्वेभ्य भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम ससंवेदन ज्ञान बले ने न जानाति तावत काल अज्ञानी भवति। अज्ञानी संग अज्ञान जाम कर्तिकर्म प्रवृत्तिम न मुंचति तस्मात बंधो भवति, बंधात संसारा संसारम परिभ्रमति अभिप्राय। दूसरी बात यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव का ससंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, ससंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता है। जान भाषा तो ऐसी है, जब तक नहीं जानता है। अब उसका उनने अर्थ लगा दिया है ससंवेदन ज्ञान बल से नहीं जानता, ये अर्थ करना। अब आपने अकेला जानना मान लिया, अब ये हमारी दूसरी तकलीफ क्या खड़ी होती है इसके साथ में? अरे कुमार जी, कि ससंवेदन बल से जाने तो ही जानना कहलाता है ना, बाकी का जानना नहीं कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा? तो हमने ये जाना आगम में पढ़ के कि द्रव्य 6 होते हैं, तो ये हमारा जानना है कि नहीं जानना है बताओ? आगम ज्ञान है कि नहीं? आगम ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण है? जैनाचार्यों ने जो प्रमाण माने हैं वो कितने माने हैं? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 6 प्रमाण माने हैं। सुने कभी विपिन भाई? बता सकते हो? बोलो। सुने सुने कितने प्रमाण मानता है? कितना नए मानता है? नए पता है कितना मानता है, ना प्रमाण मानता है कितना है। अभी मैंने जो नए चक्र लिखा ना, उसमें एक हेडिंग ही ऐसा है, हेडिंग नहीं पूरा चैप्टर, क्या नाम है? नए कितने मूल, नए कितने। और जो मैंने उस प्रमाण ने कहा, जो मूल नए दो होते हैं, फिर मूल नए निश्चय व्यवहार भी होते हैं, निश्चय भी चार प्रकार का होता है, व्यवहार भी चार प्रकार का होता है, क्यों? फिर द्रव्यार्थक पर्यार्थक भी मूल नए हैं, फिर वे भी द्रव्यार्थक दस प्रकार का होता है, पर्यार्थक छह प्रकार का होता है, वो सब बातें दी हैं। और फिर उन्होंने कहा नए होते कितने हैं, तो उन्होंने कहा दो, एक दो सात, संख्यात असंख्यात अनंत, अनंत नए होते हैं। यार यावन बयन विकल्पा तावन नया, जितने बचन के विकल्प हैं उतने नए हैं। इस हिसाब से कितने हुए? अनंत नहीं, जल्दी मत करो। इस प्रकार से तो असंख्य ही हुए कि बचन के विकल्प असंख्य होते हैं, इस हिसाब से तो असंख्य ही हुए, तो अनंत किस हिसाब से? ये समस्या अभी खड़ी है। क्या लोग, लोग कितने हैं? लोग भी मनुष्यों को लोग मानो तो वे तो भी संख्या तो ही है, और कम हो जाएंगे। देखो जितने आत्मा में गुण हैं, धर्म हैं, उतने नए हैं। कितने गुण? अनंत हैं कि नहीं है? ये जो 47 नए हैं, ये काय के आधार पर है मालूम आपको? हाँ, धर्म गुण, धर्म के आधार पर है, वो गुण के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर है। कहते हैं आत्मा में एक अस्तित्व नाम का धर्म है, उसको जो विषय बना है उसका नाम है अस्तित्व नय। आत्मा में एक नित्यत्व नाम का धर्म है, और नित्यत्व को जो विषय बना है उसका नाम लिखा क्या नहीं, 47 में ये लिखा है। अपना नए चक्र पढ़ना, नहीं देखो पढ़ लेना, 47 नए और 47 शक्तियां, अभी गुरुदेव का प्रजन भी चल रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे, क्योंकि गुण धर्म आत्मा में अनंत हैं, तो एक एक धर्म को, एक एक गुण को, एक एक विषय नए बनाता है, ख्याल में है ना? इसलिए उस हिसाब से आत्मा नए अनंत है। और प्रमाण जो छह की बात है ना, वो तो अपने जो जनेतर मत होते हैं ना, तो हर मत में कितने कितने प्रमाण होते हैं, तो उनकी बात है। तो चार वाक अकेला एक प्रमाण मानता है, बौद्ध दो प्रमाण मानते हैं, सांख्य तीन प्रमाण मानते हैं, और वैशेषिक चार प्रमाण मानते हैं, और प्रभाकर पांच प्रमाण मानते हैं, और भारत छह प्रमाण मानते हैं, और जैनी वे भी छह मानते हैं। तो भारत और जैनी मिल गए कि वे जो छह मानते हैं उनके नाम अलग हैं, और जो जैनी मानते हैं उनके नाम अलग हैं। अब उनके तो मैं आपको झगड़े में नहीं उलझाऊंगा, लेकिन जैनियों के तो नाम सुन लो आओ, प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये छह प्रमाण जैनी मानते हैं। सारा न्याय शास्त्र में इसी आधार पर भरा पड़ा है, है ना? तो उसमें आगम एक प्रमाण है, तो आगम से जो आपने ज्ञान किया वो भी प्रमाण ज्ञान है। और आगम का क्या अर्थ है? ये किताबें क्यों? अरे आगम माने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से, मतलब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से जो परंपरा ज्ञान हमसे चला आया है, उसका नाम है आगम। आगम माने चला आया, और इसका नाम ये भी पूर्व श्रुत नाम ये भी है। पूर्व श्रुत का मतलब क्या है? 11 अंग 14 पूर्व है ना, उसमें पूर्व का नाम, पूरा नाम क्या है? पूर्व श्रुत माने कान से पहले से सुनते आए हैं, इसलिए वो लिखते ही जरूरी नहीं है क्या? मैंने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से गौतम ने सुना था, तो गौतम से दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सुना, और सुनते सुनते हमारे गुरु पर्यंत वो बात आई, और फिर गुरु ने हमें सुनाया तो हमने सुना, तो ये भी अपने आप प्रमाण है। नहीं मानेंगे तो ये सारी चीजें झूठी हो जाएंगी। जम्मू दीप और तीन लोक का नक्शा और तो भी अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, और एक चौबीसियों पहले की चौबीसियों फिर अनंत चौबीसियां। तुम ये मत समझना कि ये नहीं मानेंगे तो अकेला हमारा आध्यात्म चक्कर में आएगा, तुम्हारा ये सारा पूजा पाठ उड़ जाएगा। क्यों, कैसे उड़ जाएगा? ये विधान आप करते हो इनमें है क्या? घबराना नहीं, मैं भी विधान में नहीं बैठता हूं, नहीं सुनता हूं, तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, इतना ऐसा मत समझना। इनमें लौट फिर करके या तो अकीर्तन से चैलेंज की वंदना है, क्या चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति वंदना है, क्या सिद्धों का गुणगान है, बस खत्म, यही तो है। ज्यादातर चाहे तेरह दीप विधान ले लो, चाहे ढाई दीप ले लो, चाहे जम्बू दीप ले लो, चाहे बिना क्षेत्र ले लो, चाहे बेई अकीर्तन तैयार है, और बेई दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, गज दंत तो फैलाने मंदिर ए और वो, यहाँ बावन होते हैं, इतने इतने और कितने इतने करोड़ इतने क्या कितने है ना, और नंदीश्वर द्वीप में इतने इतने, ये सब खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि ये सारा भूगोल तुमसे आया कहाँ से है तुम्हारे पास, वो आगम में से आया है, तुम्हारे ज्ञान से साक्षात तो हो ही नहीं सकता, प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो तुम्हारा पूजा पाठ जाएगा, हमारे आगे अध्यात्म को तो बाद में नंबर आएगा। क्यों कि तुम ऐसे बंटवारा क्यों कर रहे हो, ये तो तुम जानो क्यों कर रहे हैं। क्यों मेरे कहने का मतलब यह है कि आगम ज्ञान के आधार पर अध्यात्म से लेके पूजा पाठ तक सब कुछ उसके अध्यात्म आधार पर खड़ा है। चारों नियोग उनके आधार पर खड़ा है। गाथा गाथा में लिखा है जिनेही निदिठम, के जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, लिखा क्या नहीं, भरदा खलु सर्वदर्शी ही, ये सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है, कदम कदम पर ये लिखा है, तो आगम भी प्रमाण है और अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान अपन तो कहते अंदाज, क्यों एक कितने ग्राम होगा, 400 ग्राम, कम निकला तो क्या करोगे, हमारी जान लोगे, निकलेगा तो निकल जाएगा, मैं क्या करूंगा। ये अनुमान माने ये नहीं है अनुमान, अनुमान ज्ञान ऐसा अंदाजा का नाम अनुमान नहीं होता है। अनुमान ज्ञान जैन धर्म में सम्यक प्रमाण माना है। देखो बता रहे हेमचंद जी तुम्हारे, सर्वज्ञ की सिद्धि भी अनुमान से होती है, आगम से नहीं होती है। आगम में लिखा है और उससे अपने ज्ञान हो सकता है उसका, लेकिन सामने वाला कहता है तो तुम्हारे आगम में लिखा, हमारे आगम में नहीं लिखा, वो आगम के तो बंटवारे हो जाते हैं ना। क्यों साहब, जैन आगम में लिखा, अजैन आगम में नहीं लिखा, दिगंबर आगम में लिखा, श्वेतांबर आगम में नहीं लिखा, क्यों श्वेतांबर के में लिखा, थानकवासी के में नहीं लिखा, ये तो आगम का तो बंटवारा हो जाता है। तो फिर अनुमान से उन्होंने कहा, लिखा ना सिद्ध किया, अनुमेयत्वाद यज्ञ आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति है, अनुमेयत्वाद अनुमान का विषय होने से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, तो अनुमान भी प्रमाण है। क्यों प्रत्यक्ष तो प्रमाण है ही, वो केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष की बात है, उसकी बात है ये, और अपना भी प्रत्यक्ष होता ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष लोक से प्रमाण मान के चलते कि नहीं चलते हैं, फिर बोलो स्मृति वो प्रमाण है क्या नहीं है, बोलो स्मृति ज्ञान प्रमाण है क्या नहीं है, कि मुझे याद आ गया कि कल अपन ने ऐसी बात हुई थी, तो वो प्रमाण है क्या अप्रमाण है, कि तुम्हारी याददाश्त के भरोसे हमारा काम नहीं चलेगा, बोलो मानना है स्मृति को प्रमाण क्या नहीं मानना है, नहीं मानना है तो तुम चक्कर में पड़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, सोच लो क्यों, क्यों क्योंकि जाति स्मरण भी स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, क्या समझ में आया ना, जाति स्मरण भी स्मृति का भेद है, प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद है, इनके अंतर तो आप समझते होंगे, स्मृति क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तर्क क्या है, अनुमान क्या, फिर कभी अभी छोड़ो। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि भाई ये भी प्रमाण है, लेकिन वो अध्यात्म कहता है कि अनुभव प्रमाण के बिना हम उसे प्रमाणित नहीं मानेंगे, वो तुम अप्रयोजन भूत वाले मामले में वो सब प्रमाण है, प्रयोजन भूत मामले में प्रमाण नहीं है। क्यों? तुम अपने पापा की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? सब मानेंगे। एक बार वो कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, और बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, सब मानेंगे। पर एक बात नहीं मानेंगे कि किस लड़की से शादी करना, वो हम नक्की करेंगे। एक एक एक्शन तो सब रखते हैं क्या? नहीं ये भी मान लेंगे तो बिजनेस क्या करना हमें नहीं मानेंगे। कोई ना कोई एक बात तो रखते हैं ना, सब रखते ना। तो वो कहते हैं कि आत्मा के मामले में हम अनुमान और आगम, अनुमान और आगम से हम अपना काम चलाएंगे, तो विद रिस्पेक्ट, हाँ विद रिस्पेक्ट, लेकिन अंत में हम उसे अनुभव से प्रमाण करेंगे, और हमारा अनुभव उसको प्रमाणित करेगा तो हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। ये विष्णु दर्शनाचार्य ने ये कहा। ये बात मुझे आपको दिखानी थी। अब इस गाथा में एक बात और रह जाती है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि वो ये कहते हैं कि तुमने ये कहा कि कर्म के उदय से, कर्म उदय से राग होता है, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नाम क्यों दे रहे, राग कह दो ना। देखो अभय कुमार, इसका भी एक कारण है। वो कारण यह है कि हमें अनंतानुबंधी राग लेना है, अप्रत्याखानुबंध राग नहीं लेना है। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला जो अज्ञान है वो अनंतानुबंधी वाला राग है। समझे ना? तो राग से, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान से हुआ कर्म का बंध, और वो मिथ्यात् कर्म बना, अनंतानुबंधी बनी, फिर उनके उदय से फिर वो कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति का अज्ञान हुआ। तो ये तो वो कहते हैं इसमें इतरे त्रासे दोष हो गया। अब ये न्याय की भाषा है थोड़ी, इतरे त्रासे दोष और एक दूसरे के सहारे, है ना? किसी से पूछा कि भैया तुम कौन, किसके नौकर हो? क्या बाके हम चाकर हैं, जाके हम चाकर हैं? क्या कि तुम, तुम्हारा मालिक कौन है? कि जाके हम चाकर हैं। तुम किसके चाकर हो? जाके हम चाकर हैं, बाके हम चाकर हैं। अब दो ही तरह से बात, वही की वही बात बता के कहता है, इतने त्रास है। और जरा सरल बताऊं, थोड़ा सा मेरे को प्रयोग करना। ये जो है ना, इन दोनों में ऐसा खड़े होने की ताकत है कि नहीं है? ऐसा कि नहीं है, लेकिन ये ऐसे हो जाए तो इन दोनों में खड़े होने की ताकत आ गई। तो ये अब ये इसके सहारे है कि ये इसके सहारे, कि ये इसके सहारे, इसको ना बोलते इतने तरह से। समझ में आया? बहुत सरल हुआ। इतने तरह से दोष क्या है? अब पेज निकालना पड़ेंगे तुम्हें, अब जरूरत नहीं आए। सुनो, इतने तरह से दोष इसे बोलते हैं कि इसके सहारे वो, उसके सहारे कर्म के उदय से राग, और राग के उदय से राग, राग से कर्म बंद, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म बंद, और कर्म के उदय से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, तो एक दूसरे के सहारे हो गए। इसे न्याय की भाषा में इतने तरह से दोष कहते हैं, एक दूसरे के सहारे। अन्योन्याश्रय दोष भी कहते हैं, परस्पराश्रय दोष भी कहते हैं, तीन नाम है इसके न्याय की भाषा में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इतने तरह से दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जिस राग की वजह से ये कर्म बंद हुआ है, उस कर्म के उदय से वो राग नहीं होगा, वो नया राग होगा, और नए राग से जो कर्म बनेगा, उस कर्म के उदय से वो राग नहीं होगा, नया होगा। इतने तरह से तो तब होता है जो दोनों ही इस तरफ से हों, लेकिन वो राग अलग है, वो कर्म अलग है, इसलिए इतने तरह से दोष नहीं होगा। अंतर आएगा समझ में क्या? नहीं नहीं आएगा तो भी काम चलेगा, अनुभव में कोई बाधा नहीं आएगी। हम पंडितों के लिए छोड़ देना, लेकिन बता तो देता ही हूं ना। तो इसमें दूसरा दोष खड़ा हो जाएगा, इसे बोलते अनवस्था दोष। अनवस्था दोष माने अव्यवस्था, अव्यवस्था हो जाएगी कि ये राग क्यों हुआ, कि कर्म के उदय से ये कर्म क्यों बना, के राग की वजह से। तो पहला राग, पहला राग, पहला राग, पहला राग, तो कब तक जाओ, कहां तक जाओगे? जो जहां कहीं अंत नहीं पहुंचे हैं तो उसे अनवस्था दोष कहते हैं। तो कहते हैं अनवस्था दोष भी नहीं होगा क्योंकि हमारे यहां उसे अनादि माना है। बोलो पहले मुर्गी के पहले अंडा है? बोलो बता कि मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी, मुर्गी में से फिर अंडे में से मुर्गी निकलती ना और मुर्गी से अंडा होता है, तो पहले परस्पर आश्रय दोष हो गया कि ये नहीं हुआ क्योंकि जिस मुर्गी के में से जो अंडा निकलता है उस अंडे में से कोई मुर्गी नहीं निकलती, समझ गया ना। और उस अंडे में से जो मुर्गी निकलती है उस मुर्गी में से वो अंडा नहीं निकलता, वो अगला अंडा है। तो इस तरह से वो हमारा परस्परा से दोष टल गया। तो कहते अनादि बताओ फिर, पहले सबसे पहले मुर्गी थी क्या अंडा था, बोले तो हम अनादि परंपरा है इसलिए वो अनवस्था दोष भी नहीं होगा। तो कहते कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। कि नहीं मानोगे तो तुम एक बात नहीं लाखों बातें नहीं माननी पड़ेंगी। यदि तुम नहीं हो तो बताओ मुझे कि ऐसा संडे कौन सा था कि जिसके पहले शनिवार नहीं था, बता दो मुझे। अनंत नहीं है तो ऐसा संडे कौन आएगा कि जिसके बाद मंडे नहीं होगा। आखिरकार तुम्हारे पास क्या जवाब है? यही जवाब तो है ना कि अनादि अनंत है भाई। ये तो सबको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बहुत पहले कारंजा में परिसर में गया था, हो गए होंगे कम से कम 40 वर्ष तो हो गए होंगे कारंजा परिसर में गया था। तो कॉलेज के चुनाव हुए थे तो कॉलेज का शपथ ग्रहण होना था, तो उन लोगों ने मेरे प्रवचन हो रहे थे, बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम इनके हाथ से वो शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे। तो मुझे ले गए वहां, ले गए, व्याख्यान हुआ हिंसा पर। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर होते हैं यूनिवर्सिटियों का तो नियम है ऐसे कॉलेजों का। तो प्रश्नोत्तर हुआ तो एक लड़का बोला खड़ा होकर के, यही बिल्कुल, कि साहब जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं कि संसार कब से चला है चला, पंडितों के पास एक ही जवाब होता है कि वो तो अनादि है और तो इन्हें कुछ आता नहीं है, इनके पास रद्दे रटाए दो जवाब हैं, ऐसे ही प्रश्न किया, एक अनादि और एक अनंत, और सबका जवान बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा पंडित लोग तो भैया ऐसे ही हैं, ज्यादा समझते नहीं है, आप तो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अब अपन नक्की कर लेते हैं ने? हाँ अपन करो नक्की कि ऐसा संडे कौन सा था कि जिसके पहले शनिवार सैटरडे नहीं था, बोलो बताओ। एक ये जो 7 बार शुरू हुए हैं मुझे एक ही पता लगा आज तक कि किस दिन से शुरू हुआ, स्टार्टिंग का दिन कौन सा था और अंत कब हो जाएगा। वो तो एंडलेस है। मैंने कहा अच्छा एंडलेस को ही तो अनंत कहते हैं। मैंने कहा पंडित जवाब देते हैं तो वे मूर्ख हो गए और तुम भी वही बात कह रहे हो। अरे भाई कोई भी समझदार आदमी यदि इसकी अंत और आदि खोजने जाएगा जिसका आदि और अंत है नहीं, तो समझदार आदमी तो इसी निर्णय पर पहुंचेगा। अब ये तुम्हारी बात है कि तुम पंडितों को समझदार मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो, हाथ जोड़ के पैर पड़ लिए उसने मार दिया था। तो भाई ऐसा है, वो अनादि नाम की जो परंपरा है उससे हमारा अनवस्था दोष भी निकल जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि जब तक यह आत्मा रागादि मिथ्यात्व के साथ कर्तव्य पदार्थों के साथ कर्तव्य बुद्धि नहीं छोड़ेगा तब तक यह आत्मा बंध से निवृत्त नहीं होगा। कृष्ण क्या था कि बंध से निवृत्त कब होगा, किस तो उन्होंने बताया कि जब एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ेगा तब होगा, और जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा तब तक यह बंध से निवृत्त नहीं होगा। बंध से निवृत्ति का तो यही एकमात्र उपाय है।